रिहाना बेगम ने फिर पूछा। फिर उन्होंने सीधे कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम नूर पर बिगड़ रहे थे, अगर तुम उससे ऐसे रूढ़ होकर बात करोगे, उन्होंने सख्ती से कहा, तो कौन उसकी इज्जत करेगा। रिहान चुप खड़ा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी। अचानक रिहान को उस गाड़ी की लोकेशन याद आ गई, साथ ही उसके दिमाग में नूर और अरमान का ख्याल घूमने लगा। रिहाना बेगम ने उसके चेहरे पर बदलते भाव देखकर कहा, देखो रिहान, ऐसा मत करो, आजकल तुम छोटी छोटी बातों पर अरमान को सुनाने लगे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? रिहान ने कुछ पर चुप रहकर जवाब दिया, क्योंकि मैं नूर और अरमान को एक दूसरे से दूर रखना चाहता हूँ। उधर अरमान जो जा चुका था, लॉन के बीच वाले दरवाजे के पास खड़ा था। वो वहीं रुका हुआ और अब उनकी सारी बातें सुन रहा था। लेकिन किस लिए? रिहाना बेगम ने हैरानी से पूछा। उन्हें रिहान की बात समझ नहीं आ रही थी। रिहान असली वजह नहीं बता सकता था। वो अपनी माँ को ये नहीं बता सकता था कि उसने गाड़ी की लोकेशन ट्रेस करवाई थी और क्या सोच रहा है। इसलिए उसने बात घुमाकर कहा, दोनों बच्चे हैं, छोटी उम्र है उनकी, जरा जरा सी बात पर लड़ते हैं और घर का माहौल खराब होता है। दरवाजे के पास खड़ा अरमान ये सुनकर मन ही मन मुस्कुरा दिया, लेकिन वो अभी भी वहीं खड़ा सब सुन रहा था। अरे, ये तो मामूली सी नोकझोंक है, रिहाना बेगम बोली, इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें अपने बेटे की बात ही सच लगी थी। लेकिन रिहान ने तुरंत कहा, ये मामूली नोकझोंक नहीं है। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, आपको पता है ना, चाची जान नूर पर हाथ उठाने वाली थी, मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। अगर ऐसा हुआ तो दोनों घरों का रिश्ता खराब हो जाएगा और नूर की बेइज्जती भी होगी। कुछ पल रुककर वो बोला, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अरमान इस घर में भी आए। रिहाना बेगम चुप होकर उसकी बात सुनती रहीं। रिहान ने आगे कहा, आप खुद सोचिए मॉम, उन दोनों का इतना करीब होना नूर के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रिहाना बेगम ने धीरे से कहा, तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन वो बच्चे हैं, उन्हें इन बातों की समझ नहीं है। रिहान ने फिर कहा, आप मानती हैं ना कि मैं सही कर रहा हूँ, तो नूर की भलाई के लिए उन्हें एक दूसरे से दूर रखना होगा। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, आप मेरी बात मानेंगी और उन्हें दूर रखेंगी? रिहाना बेगम हल्का सा मुस्कुराई। मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है? उन्होंने प्यार से कहा, नूर तो फिर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। पास ही दरवाजे के पीछे खड़ा अरमान ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था रिहान उसे नूर से दूर क्यों करना चाहता है। अरमान को लगा रिहान को नूर की फिक्र है, मगर ऐसा नहीं था। जिम्मेदारी तो नूर पहले भी मेरी थी, लेकिन अब बात जिम्मेदारी से बढ़कर है, रिहान ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। पास ही खड़ा अरमान ये सारी बातें सुन रहा था। रिहाना बेगम ने अपने बेटे की तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। वैसे एक बात से मैं खुश हूं, उन्होंने कहा। कौन सी बात? रिहान ने हैरानी से पूछा। ये कि नूर ने तुम्हारे दिल में जगह बना ली है, रिहान ने अपनी माँ को हैरान होकर देखा। लेकिन रिहाना बेगम का मतलब वो नहीं था जो रिहान समझ रहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो नूर से प्यार करने लगा है, लेकिन रिहान को लगा कि उसकी माँ को उसके किसी फैसले पर एतराज नहीं होगा। थोड़ी देर बाद अरमान वहां से चला गया, रिहाना बेगम भी अंदर चली गई और रिहान भी अपने काम के लिए निकल गया। उधर दूसरी तरफ नूर ने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। दिखाइए वक्त कैसे सबका जवाब देता है, मैं बिल्कुल लेट नहीं हो रही, वो जिद भरे अंदाज में बोली। इसलिए फैजान उसे एक जगह लेकर आया, वो जगह थी कब्रिस्तान। जैसे ही नूर ने आसपास देखा, उसने तुरंत अपना सिर ढक लिया। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? नूर ने हैरानी से पूछा। फैजान धीरे धीरे चलते हुए उसे कब्र के पास ले गया। आपको जवाब चाहिए था ना, वो शांत आवाज में बोला। तो देखिए वक्त कैसे सबको चुप कर देता है। नूर चुप होकर उसकी बात सुनने लगी। फैजान ने आसपास की कब्रों की तरफ इशारा किया। ये दुनिया की सच्चाई है, वो बोला। यहाँ ऐसे लोग भी सोए हुए हैं जिनकी जबान की तेजी लोगों के कलेजे काट देती थी। फिर उसने दूसरी तरफ देखा, और यहाँ ऐसे लोग भी सो रहे हैं जिनकी जबान इतनी मीठी थी कि लोग उन्हें सुनते नहीं थकते थे। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, लेकिन आज देखो सब खामोश हैं। हवा हल्की सी चल रही थी। नूर ने चारों तरफ देखा और पहली बार उसकी जिद थोड़ी सी शांत हो गई, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था वक्त सच में सबका जवाब दे देता है। मुझे डर लग रहा है, नूर ने धीमी आवाज में कहा। फैजान ने उसकी तरफ देखा और शांत लहजे में बोला, ये डरने की जगह नहीं है नूर, ये सीखने की जगह है। नूर उसकी बात समझ नहीं पा रही थी। फैजान ने आसपास की कब्रों की तरफ देखते हुए कहा, आखिर दुनिया को जाकर यहीं खत्म होना है। जब इंसान यहां लेटता है तो बस खामोशी से अपने वक्त का इंतजार करता है। उसकी आवाज में अजीब सी गंभीरता थी। फैजान अपने साथ कुछ फूल भी लाया था। वो धीरे धीरे उन्हें कब्र पर रखने लगा। नूर ने हैरानी से पूछा, ये किसकी कब्र है? फैजान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे अम्मी और अब्बू की। नूर एकदम चौंक गई, क्या? फैजान हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में दर्द था। तुमने पूछा था ना कि मैं अपने बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं बताता और रेहान भाई के ऑफिस में काम क्यों नहीं करता, उसने कब्र की तरफ देखते हुए कहा, वजह यही है। फिर उसने नूर की तरफ देखा, तुम ताई अम्मी और चाची जान को तो जानती हो ना, कैसे अपने बच्चों की जरा सी तकलीफ पर तड़प उठते हैं। कुछ पल रुककर उसने भारी आवाज में कहा, तो बताओ, अगर मेरे अब्बू मुझे अपने ही ऑफिस में गुलामी करते देखते तो क्या वो इस कब्र में चैन से सो पाते? नूर चुप हो गई। फैजान धीरे से बोला, एक बात बताऊं, इस दुनिया का हर रिश्ता कभी कभी मर सकता है, लेकिन माँ बाप का रिश्ता कभी नहीं मरता। उसकी आंखें कब्र पर टिकी हुई थी। माँ बाप कब्र में भी अपने बच्चों को देखते रहते हैं, उनकी तकलीफ उन्हें कब्र में लेटे हुए भी चैन से नहीं रहने देती। फैजान की आवाज भर्रा गई, और मैं इन्हीं की तकलीफ को दूर करने के लिए अपना मुस्तकबिल बना रहा हूँ। उसने बचे हुए फूल नूर की तरफ बढ़ा दिए। नूर ने चुपचाप फूल ले लिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर दोनों कब्रों पर फूल रख दिए। वो हैरान थी, परेशान भी, क्योंकि आज पहली बार उसे समझ आ रहा था फैजान उतना साधारण नहीं था जितना लोग उसे समझते थे। अरमान वो ज्वेलरी सेट लेकर रेहान के ऑफिस पहुंच गया था जो रेहाना बेगम ने मंगवाया था। रेहान अपनी कुर्सी पर बैठा फाइल देख रहा था। ये सेट? अरमान ने टेबल पर रखते हुए कहा। रेहान ने बिना ज्यादा देखे कहा, इसे घर जाकर मॉम को दे दो। तुम यहाँ किस लिए आए हो? अरमान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सीधे कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा। क्या? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं नूर से दूर हो जाऊं? रेहान की आंखें एक पल के लिए सख्त हो गईं। ये तो तुम्हें कल गेट का लॉक देखकर ही समझ जाना चाहिए था, उसने ठंडी आवाज में कहा। कुछ पल की खामोशी छा गई, फिर रेहान बोला, आप जब तुम जान चुके हो तो उसी तरह रहो। अरमान ने गहरी सांस ली। मैं इसीलिए आपसे बात करने आया हूँ, वो शांत आवाज में बोला। आपकी नीयत और आपकी अहमियत दोनों जानता हूं मैं, रेहान ने भौहें से कोड़ ली। मेरी नीयत? उसने हल्की घबराहट के साथ कहा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसे डर हो कि कहीं अरमान उसके दिल की बात समझ तो नहीं गया, लेकिन अरमान ने शांत लहजे में कहा, आपको लगता है कि हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग से घर में लड़ाई हो जाती है, बस यही कारण है ना? फिर उसने धीरे से कहा, और अगर ऐसा हुआ तो नूर की पोजीशन भी खराब हो जाएगी। रेहान कुछ पल चुप रहा, उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और अंदर कहीं जलन भी, लेकिन उसने अपने भाव छिपाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल यही वजह है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी।